समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बहुत कुछ रहेगा आज के अंक में। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka, the weather is really tricky in Delhi these days. It's a hazy sunshine with a high of 30 degrees Celsius temperature, and a low of 13 degrees is expected in the evening with a moderate breeze from the west. All of this leads to a risk of seasonal illnesses due to the frequent change in the temperature.
और हमारी आवाजों से भी शायद लग रहा हो हल्का फुल्का, क्योंकि
even I'm down with cough and cold a little.
हर सभी को है, क्योंकि ये मौसम हर साल ऐसे बदलता है, होली तक थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसलिए संभल कर रहे और ये मौसम जो है इसके मिजाज से बचें।
Of course. She said it right, and now we shall start with the news headlines at this hour, Priyanka. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 2,500 crore rupees at Silvassa in Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu.
प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे।
Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to promoting regional languages, including Tamil.
किफायती स्वास्थ्य देखभाल और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है।
US सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स मुंबई टेरर अटैक कॉन्विक्ट तहवुर राणाज प्ली अगेंस्ट एक्सट्रेडिशन टू इंडिया।
और भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस में चल रहे ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
And it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about today's Jan Aushadhi Divas, the day celebrated to raise awareness about the scheme and promote the use of generic medicines with an objective of making quality generic medicines available at affordable prices to all. Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana aims to make quality generic medicines available at affordable prices.
बिल्कुल, और हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आरंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य यही था कि ब्रांडेड महंगे जो दवाइयां हैं उसके स्थान पर आप जेनेरिक दवाइयों को प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें। और अगर देखा जाए जेनेरिक दवाएं ये जो जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं, और खुले बाजार में जबकि इसकी कीमत काफी होती है, 50-80% तक इनकी कीमतें जो बाजार की ब्रांडेड दवाओं से की जो दाम है उनसे कम होती हैं।
Yes, Priyanka, you're right. This Pariyojana, which was an initiative of our Prime Minister, is crucial for making quality generic medicines accessible and affordable to all, reducing the out-of-pocket healthcare expenses and promoting health equity.
बिल्कुल, और देखा जाए जेनेरिक दवाएं होती क्या है। जेनेरिक दवाएं आमतौर पर सभी दवाएं जो होती हैं वो एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं, और इन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवाएं जिस सॉल्ट से बनी होती हैं उसी के नाम से जानी जाती हैं। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाली पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे, वहीं जब इसे किसी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड जो है दवा कहलाती है।
ऑफ कोर्स इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट्स प्रियंका, एंड इट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस विद डोमेस्टिक एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिकेशन। सो ब्रांडेड ड्रग्स आर ऑफन सोल्ड एट सिग्निफिकेंटली हायर प्राइसेस डिस्पाइट ऑफरिंग द सेम थेरापियोटिक बेनिफिट्स एज जेनेरिक्स, एंड बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल जेनेरिक medicines at 50% to 80% lower prices than branded alternatives, Pradhan Mantri Jan Aushadhi scheme ensures that quality healthcare products reach every section of society with a focus on marginalized communities.
बिल्कुल, और इन केंद्रों में श्रेष्ठ गुणवत्ता के लिए केवल प्रमाणित उत्पादनकर्ता से खरीदी गई दवाइयां ही मिलती हैं। और अगर आपको पता हो अनुजा, इस योजना के प्रमुख पहल में सुविधा सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध होता है, जिसकी कीमत केवल 1 रुपए प्रति पैड है, और अगर आप बाजार में देखेंगे तो इसकी कीमत ज्यादा है। और देश के सभी जिलों में अब 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, और इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन दैट मेडिसिन्स प्रोवाइडेड अंडर द जन औषधि स्कीम आर सोर्स्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम WHO GMP व्हिच इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स ओनली।
और कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सस्ती दवा का असर कम होगा, लेकिन जेनेरिक दवाएं इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि इन पर नई रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च नहीं आता है, इन्हें विज्ञापन और मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, और कई कंपनियां एक ही दवा बनाती हैं जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और कीमतें कम रहती हैं।
यस, सो दिस इनिशिएटिव आल्सो सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स such as women and ex-servicemen to operate the PM Bharatiya Jan Aushadhi Scheme.
और जन औषधि दिवस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार हैं, सुदर्शन पटनायक ने 6 घंटे तक रेत की कलाकृति बनाई और देश भर में जन औषधि केंद्रों के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। और हमारे संवाददाता ने बताया है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की।
इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50-80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं, और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है। दीपेंद्र और भानु प्रताप सिंह के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अनुजा, अगर एक व्यक्ति को या एक परिवार को सस्ते दाम पर उत्तम दवाएं मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, जैसे आयुष्मान योजना भी चल रही है, तो सोचिए एक खर्च कितना कम हो सकता है।
राइट, एंड इट आल्सो विल अफेक्ट द बजट ऑफ द होल फैमिली इन अ मंथ।
जी हाँ। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होने का।
राइट, सो टुमारो इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इजंट इट प्रियंका?
बिल्कुल।
सो ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे वी रिकॉग्नाइज द रिमार्केबल इम्पैक्ट वुमेन हैव हैड अक्रॉस द ग्लोब। आकाशवाणी कोहिमा ऑल्सो सेलिब्रेटेड द ओकेजन विद अ वाइब्रेंट प्रोग्राम। वी हैव मोर फ्रॉम आवर कोहिमा कॉरेस्पॉन्डेंट।
On International Women's Day, a day dedicated to honoring the strength, achievements and resilience of women worldwide, Akashvani Kohima marked the occasion with great enthusiasm and celebration. During the event, Kresanisa Rutsa acknowledged the countless ways women have contributed across all areas of life and discussed how the role of women in society has evolved with changing times.
Now the situation has changed. We all know women are now doing much, much better than our men folk. They are now quite ahead of us. The scenario has changed. In olden days, as I say, though they are not included in decision making in higher level those days, their role behind the scenes is very important.
Women have been the backbone of societies, paving the way for future generations to rise, dream and break barriers. Today, we reflect on the incredible women in our lives, the mothers, the daughters, the teachers and the leaders. Let's also recognize those whose name we may not know, but whose work changes the world every day. To all the women tuning in today, you are seen, you are appreciated. Let's continue to inspire change, support one another, and lift each other up every day of the year. Wishing all our listeners a very happy International Women's Day.
Over the rainbow, way up high.
For Parikrama, this is Mary from Kohima.
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आपने रिपोर्ट सुनी हमारी महिला कॉरेस्पॉन्डेंट से, और ये कार्यक्रम भी होस्ट कर रही हैं दो महिलाएं। लेकिन अगर अनुजा देखा जाए, महिला दिवस पर एक महिला की जो उसके क्षेत्र में उपलब्धि है उसको सम्मानित किया जाता है, बहुत ही अच्छा उत्तम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी महिलाएं होम मेकर है, जो घर संवारती है, उनकी उपलब्धि, उनका योगदान भी अमूल्य है। और चलिए हमारी अगली रिपोर्ट में भी पुदुचेरी की एक युवा महिला की कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने नवाचार किया है, बताएंगी अनुजा।
राइट, श्री लक्ष्मी वेंकटपति, शी इज अ यंग एग्रीकल्चरल इनोवेटर फ्रॉम कुडपक्कम इन पुदुचेरी हु इज रिवोल्यूशनाइजिंग इंडियन फार्मिंग विथ अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ अ फादर पद्मश्री अवार्डी वेंकटपति, शी हैज डेवलप्ड यूनिक क्रॉप वेराइटीज इंक्लूडिंग ऑरेंज, चॉकलेट, जामुन एंड रोज वाटर फ्लेवर्ड ग्वावाज, हाई यील्ड कैसुरीना, घी चिली एंड अ स्पेशल ब्लैक पेपर वेराइटी दैट यील्ड्स इट जस्ट 15 फीट इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 40 to 50 feet। हर लेटेस्ट इनोवेशन अ लेमन फ्लेवर्ड एरोमेटिक पेपर हैज एस्टोनिश्ड द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी एज अ होल। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
Sri Lakshmi Venkatapathi's journey in agriculture began at the young age of 7. Inspired by her father's pioneering work in floriculture, she ventured into research-driven farming, leading to multiple innovations that have transformed agricultural practices. From exotic guava flavors to high-yielding trees, her work is helping farmers boost productivity. Despite holding an MBA, Sri Lakshmi chose the path of agricultural innovation over a conventional corporate career, driven by her passion for farming and research. This young agri-innovator has spent over 2 decades experimenting with new agricultural techniques, successfully growing apples in Puducherry's tropical climate and developing a single plant that produces tomatoes, brinjal and chilies. Under the banner of LNTC Innovation Center and High-Tech Agri, she provides her high-yield crops to farmers, making a change in their lives. Her contributions have been widely recognized, earning her national and international accolades, including an honorary doctorate from the International Peace University. Germany. Speaking exclusively to Agashwani, Sri Lakshmi said that agriculture has immense potential for employment generation, and during the time of COVID, many people turned to agriculture. She believes that with dedication and the right support system, more women can pursue agriculture as a thriving career.
In agriculture, there is no lot of women are there because it is not a difficult field. It is a very easiest field. If we have interest, surely we can come to the field and we can achieve lot of things because the new invention need in the agriculture field, and we can get lot of profit in this field.
With her out-of-the-box thinking, Sri Lakshmi continues to push the boundaries of agricultural science, proving that even the most traditional sectors can be transformed through research and creativity. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashvani News, Puducherry.
हमने इस रिपोर्ट में संतरे, चॉकलेट, जामुन और अमरूद की नई नई किस्मों के बारे में और अद्भुत उपज के बारे में सुना। अब आपको ले चलते हैं, जब ये पक जाएगा फसल, ये जाएगी बनने के लिए रेस्टोरेंट्स में लिए, तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर मंडल के 6 स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने का निर्णय लिया है। जयपुर मंडल के वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ही लंबे समय से इन रेस्टोरेंट की मांग की जा रही थी। इस खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता सुदर्शन की, आई सुनते हैं।
रेलगाड़ियों के पुराने डिब्बों को आकर्षक तरीके से सजाकर ये वातानुकूलित रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। हर कोच में करीब 60 लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। खातीपुरा, दुर्गापुरा, गेटोर, जगतपुरा, रिंगस, सीकर और दौसा रेलवे स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत होगी। जयपुर जंक्शन पर पहली बार फूड ट्रक चौपाटी शुरू की जाएगी। इसमें स्थानीय व्यंजनों के साथ ही साउथ इंडियन, इटालियन और अन्य व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। परिक्रमा के लिए जयपुर से सुदर्शन नाहर।
And Priyanka, recently a World Wildlife Day was celebrated on the 4th of March across the globe with the theme Wildlife Conservation Finance, Investing in People and Planet. And Gujarat, the home of Asiatic Lions, has set a successful example of wildlife conservation by ensuring people's participation in wildlife conservation. We have a report from our correspondent from there.
Today, India is the only country where Asiatic lions survive in the wild. Gir National Park in Gujarat is the last abode of Asiatic lions on the earth. It is in this lush green heaven that these majestic creatures roam freely. Thanks to the conservation initiatives of the park, it is now a sanctuary that not only preserves these incredible animals, but also acts as a display for one of the world's biggest conservation success stories. The species, which at once was on the verge of extinction, has witnessed an inspiring turnout following the wide efforts of the government. Talking to Akashvani, Dr. A.P. Singh, Principal Chief Conservator of Forest in Gujarat, said, over the years, not just the number, but also the area of lions has increased significantly.
सिंहों के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार कटिबद्ध है. सिंहों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. 2015 की जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन था, उस समय 523 एशियाई सिंह थे और 2020 के बस्ती गिनती हुई तो उसमें 674 लायन है और अब हर 5 साल में होती है. एशियाई सिंह हैं, उनकी संख्या और विस्तार दोनों में वृद्धि हो रही है.
In another example of wildlife conservation, Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the world's largest animal rescue and conservation center, Vantara, at Jamnagar in Gujarat. Spread over 3,500 acres, Vantara houses over 1.5 lakh rescued and endangered animals and includes an advanced wildlife hospital. As the world celebrates its wildlife, Gujarat stands as a shining example of what can be achieved when people, communities and governments come together for the protection of nature. For Parikrama, this is Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
And with an aim to promote the comics industry in India, Comics Creator Championship is being organized under the aegis of Waves 2025. That is scheduled to be held in Mumbai from the 1st to the 4th of May. The championship is part of the Create in India Challenges, a flagship initiative of the Ministry of Information and Broadcasting. Organized in association with the Indian Comics Association, the 76 semi-finalists are now working to give final touches to their artwork.
Anuja, jab comics ka naam आता है ना तो ऐसे पुराने दिन याद आ जाते हैं और ऐसे लगता है अपने बचपन में चले गए. से कई थी, चाचा चौधरी, पिंकी, चंपक, अमर चित्र का था, तो मतलब उसमें जैसे कला है छवियों और शब्दों के उपयोग से कितने सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता था और एक तरह से एक दोबारा से एक नया निखार दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री को.
एब्सोल्युटली. टू नो मोर अबाउट द कंपटीशन, लेट्स लिसन टू आवर मुंबई कॉरेस्पोंडेंट.
The Comic Creator Championship is being held in two categories, that is professional and amateurs. The artists will be judged on their creativity, originality, storytelling and visual appeal, besides their ability to reflect Indian themes and sensibilities. By the end of the competition, each finalist will have a coherent 8 to 10 page comic for a panel of 5 judges who will decide the 5 winners under each category. Among the championship's star-studded jury is Jazel Humawazir, an award-winning animation professional and the creator of The Best Legion, India's first and longest-running web manga. Impressed by the entries coming through, Mr. Jazel Humawazir said, Waves 2025 is a good step, especially for self-published artists to showcase their talent to a wider audience.
It's been an absolutely amazing ride judging all the entries. There has been so much creativity coming out of them. So the level of art that I'm seeing and the level of storytelling that's coming out is really good. People are literally leveling up their game and the competition is so fierce.
He also expressed the need for expanding the comics market in India.
Since the very beginning, India doesn't have a concentrated comics market nor a comics distribution system. I'm hoping this event opens those doors for artists and self-published artists like me to put work out there.
The winning entries of the championship will be published in a Waves comic anthology and the artist will receive cash rewards. With Nisha Rane, this is Sweetie Jain for Parikrama from Mumbai.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस में चल रहे ऑर्लियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला आज डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा. उधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज लखनऊ में गुजरात जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा. मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा.
यस, एंड इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस न्यूज ऑफ द डे, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड नियरली अनचेंज्ड इन अ रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन. Today, the 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell slightly by 7 points to close at 74,332, while the National Stock Exchange Nifty 50 added 8 points to settle at 22,552. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter and first Chief Minister of Uttar Pradesh, Bharat Ratna Govind Ballabh Pant, who died on 7th March 1961. Alongside Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Vallabhbhai Patel, Pant was a key figure in the movement for India's independence and later a pivotal figure in the Indian government.
Pant was born on the 10th of September 1887 in Shahi Devi Hills in Almora, now in Uttarakhand. He was brought up by his grandfather, Badri Dutt Joshi.
Known as an extremely capable lawyer, Pant was appointed by the Congress Party to initially represent Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan and other revolutionaries involved in the Kakori case in the mid-1920s. He participated in the protests against the Simon Commission in 1928. During the protests, he sustained severe injuries, which prevented him from straightening his back for the rest of his life.
Inspired by Gandhiji, Pant organized a salt march in his area and was put behind bars for a few weeks. In 1933, he was imprisoned for 7 months for attending a session of the then banned Provincial Congress. In 1934, Pant was elected to the Central Legislative Assembly. His political skills won the admiration of the leaders of the Congress and he became deputy leader of the Congress Party in the Assembly. In 1940, he was arrested and imprisoned for helping organize the Satyagraha movement. In 1942, he was arrested again for signing the Quit India Resolution and spent 3 years in Ahmednagar Fort along with other Congress members. He was released in March 1945 on grounds of failing health.
In 1937 provincial elections, the Indian National Congress secured a majority in the United Provinces. Pant became the Chief Minister on July 17, 1937. However, in 1939, the Viceroy's declaration of war without consultation led to a clash with the Indian National Congress and its provincial ministers resigned. In 1945, the new British Labour government ordered new elections to the provincial legislatures. The Congress won a majority in the 1946 elections in the United Provinces and Pant was again made the Chief Minister, continuing even after India's independence in 1947. Pant was appointed Minister of Home Affairs in the Union Cabinet on 10th of January 1955. As Home Minister, his chief achievement was the reorganization of states along linguistic lines. Pant received the country's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1957. We salute the great freedom fighter.
We also remember freedom fighter and eminent writer Sachidanand Hiranand Vatsyayan, popularly known as Agyeya, who was born on the 7th of March 1911 in Kushinagar, Uttar Pradesh.
While pursuing his post-graduation, Agyeya was inspired by the revolutionary freedom movement and joined the Hindustan Socialist Republican Army, HSRA. He participated in revolutionary activities against the British and in November 1930, he was arrested on account of his involvement in the attempt to help Bhagat Singh to escape from jail. He was sentenced to 4 years of imprisonment on charges of sedition against British rule.
Agyeya was associated with the Progressive Writers Association, PWA, and organized the All India Anti-Fascist Convention in 1942. He published several translations into English of other writers and a collection of his own poems, Prison Days and Other Poems. Agyeya died on the 4th of April 1987. We salute the great Indian.
और अब याद करते हैं जानी मानी हस्तियों को. जी हां, आजादी के सफर में आपने प्रसिद्ध रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी के बारे में सुना. उसमें हमने स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में जाना. थोड़ी सी जो जिक्र है उनके साहित्य जीवन के बारे में भी करते हैं. उन्हें देश विदेश में प्रयोगवादी कवि, निबंधकार, कथाकार, यात्रा संस्मरण संपादक और भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के सफल व्याख्याता के रूप में जाना जाता था. और उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास जगत का कीर्ति स्तंभ माना जाता है. उनकी अनूठी प्रयोगवादी कविता शैली का आनंद इस कविता में बखूबी मिलता है कि प्रिय मैं तुम्हारे ध्यान में हूं. बह गया जग मुग्ध सरीसा, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। तुम विमुख हो, किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो तुम। साधना है सहस नयना, बस कहीं सम्मुख रहो तुम। विमुख उन्मुख से परे भी तत्व की तल्लीनता है। लीन हूँ मैं, तत्वमय हूँ, अचर चर निर्वाण में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन कर अपने समय के प्रतिनिधि प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं के साथ हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी नई कविता को प्रतिष्ठित किया। और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय जी ने अपने जापानी हाइकू कविताओं को अनुदत किया। और देखा जाए तो प्रकृति से यायावर अज्ञेय ने आकाशवाणी में सेवा करते हुए हिंदी प्रसारण का संवर्धन भी किया।
Right, Priyanka. Aghey was awarded the Sahitya Academy Award in 1964 and the Gyanpeeth Award in 1978 and the internationally reputed Golden Wreath Award for his poetries. And the next personality we pay tribute to today is Ravi, who was an Indian music director who had composed music for several Hindi and Malayalam films. After a successful career in Hindi cinema, he took a hiatus in the 1970s and made a successful comeback again in 1982 in the Malayalam music scene under the stage name Bombay Ravi.
बिल्कुल। और आज हम संगीतकार रविशंकर शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम शादी ब्याह देखें तो उनमें दो गीत हैं जिनके बिना जो शादी का कार्यक्रम संपन्न नहीं होता, जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा जो नीलकमल का गीत है, या आज मेरे यार की शादी है जो आज भी बजाया जाता है जिसकी धुन। और इन दोनों गीतों को संगीतबद्ध किया था रविशंकर शर्मा जी ने, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और इसके अलावा जो बच्चों को लोरियां भी आज माएं सुनाती हैं, आज तक चंदा मामा दूर के, और इसके अलावा टिम टिम करते तारे, ये भी उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई हैं।
एंड ही कंपोज्ड सेवरल हिट सॉन्ग्स एंड लेट्स हियर अ हिट सॉन्ग। द कंपोज्ड म्यूजिक बाय हिम इज फ्रॉम द मूवी चौदवी का चांद।
चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो।
He was awarded the Padma Shri by the Government of India in 1971 and the National Film Award for Best Music Direction in Pariniyam, and also the Kerala State Film Award for Best Music Director in 1986 and 1992.
और आज जन्मदिन है जाने माने अभिनेता अनुपम खेर का। जी हाँ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, चाहे आप उनकी खलनायक की भूमिका में देखें उन्हें, या उनका हास्य कलाकार के रूप में उनको देखें, या एक संजीदा कलाकार, सब में बेहतरीन उन्होंने अदाकारी की है। और सारांश मूवी जिसमें उन्होंने 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था, उस फिल्म का एक डायलॉग है, आइए सुनते हैं।
मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे।
Who is this man?
I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लाठी खाई है 42 में, ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे आप मुझे, ये मेरा इनाम, शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है।
Wishing Anupam Kher a very happy birthday from the Akashwani Parivar. And today is also the birthday of Sadhana Sargam, the Indian singer known for her playback career in Indian cinema, predominantly in Hindi, Marathi, Bengali, Nepali, Tamil and Telugu language films. Of course, the best known song, one of the best known songs in her voice is Chupke Se Lag Ja Gale from the film Sathya.
Daddy।
चाय की चुस्कियों के साथ इस बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज में आपको गीत सुनाया और अब से हमें कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए तो प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमस्कार।